भजन तब अकारण गेला कृष्ण भजन तब कृष्ण भजन तब अकारण गेला परहित सूरज नहीं जानी आत परहित सूरज नहीं जानी राधा विरहित माधव नहीं मानी राधा विरहित माधव नहीं मानी राधा भजन जदि कृष्ण भजन तब अकारण गेला केवल माधव पूजय स्वज्ञानी केवल माधव पूजय स्वज्ञानी राधा अनादर करई अभिमानी राधा अनादर करई अभिमानी कबहि नाही करबि ताकर संग कबहि नाही करबि ताकर संग चित्ते इच्छसि जदि ब्रजर सरंग चित्ते इच्छसि जदि ब्रजर सरंग राधा भजने जदि मति नाही भेला कृष्ण भजन तब अकारण गेला राधा भजन जदि मति नाही भेला राधिका दासी जदि हय अभिमान राधिका दासी जदि हय अभिमान शीघ्र मिलै तब गोकुल गान शीघ्र मिलै तब गोकुल गान Ah शिव नारद श्रुति नारायणी ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद रज पूजय मानी सत्या सची चंद्र रुक्मिणी उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनाय वाणी परिचर्या जाकर धन राधा परिचर्या जाकर धन भक्ति विनोद तार मागय चरण विनोद तार मागे चरण राधा भजने जति पति कृष्ण भजन तब अकरण सेना
ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि श्री राधा जी के भजन में मति नहीं लगे तो समझे कि कृष्ण का भजन सब व्यर्थ ही हो गया। जिस प्रकार ताप रहित सूर्य को नहीं माना जा सकता उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर मैं केवल माधव को भी कभी नहीं मानता हूं। अज्ञानी लोग मिथ्या अभिमान के कारण राधा जी का अनादर करके केवल माधव की पूजा करते हैं। अतः यदि किसी के हृदय में ब्रजभाव की ब्रजरस की प्राप्ति की इच्छा हो तो भूल कर भी ऐसे अभिमानियों का संग न करें। यदि किसी के हृदय में राधा जी की दासी का भाव व अभिमान आ जाए तो शीघ्र ही उसे ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति हो जाती है। और की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा शिव, नारद, श्रुतियाँ एवं लक्ष्मी, ये सभी श्रीमती राधिका जी के श्री चरणों के धूलि की पूजा करते हैं। उमा, लक्ष्मी, सत्या, सची, चंद्रा तथा रुक्मिणी, ये सभी श्रीमती राधिका जी के अवतार है। शास्त्र इस प्रकार के बात के प्रमाण है। ऐसी श्रीमती राधिका जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है, भक्ति विनोद ठाकुर उनके श्री चरण की सेवा की आकांक्षा करते हैं। तो जैसे मैं कल बता रहा था, आज भी भारत के अनेक प्रांत में देखा जाता है कि राधा जी के पूजा नहीं है। इसे वहां तो प्रसिद्ध केवल राधा जी की पूजा वृंदावन में ही होते हैं, है ही नहीं, लेकिन कृष्ण की पूजा अवश्य सब जगह में है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि भले किसी भी प्रकार तन्मयता के साथ कृष्ण के भजन पूजन करो, अगर राधा भजन में आपके रति उत्पन्न नहीं हुआ तो समस्त भजन पूजन आपके व्यर्थ हो गया, बेकार चला गया। तो इसलिए प्रमाण भी देते हैं, जैसे सूरज है, सूरज का लाइट एंड हीट ना हो तो कोई मानेगा सूरज का उसको? हीट ही नहीं है, लाइट ही नहीं, सूरज कैसे है? तो ठीक इसी प्रकार कृष्ण विदाउट राधा, भक्तिनो ठाकुर बोलते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार हम लोग कल राधा रानी के तत्व के बारे में थोड़े बहुत चर्चा शुरू किए थे, तो आज इसी के क्रमानुसार आज चर्चा करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ह्रादिनी नाम जहान। कहते श्री राधिका जी कृष्ण का विकार है, किस चीज का विकार है ना, प्रेम के विकार है। तो उनको समझाते हुए कहते हैं कि स्वरूप शक्ति ह्रादिनी नाम जहान, श्री राधा रानी का नाम स्वरूप शक्ति या ह्रादिनी, ये स्वरूप शक्ति के बारे में कल हम थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। कृष्ण के अनेक प्रकार की शक्ति है, विशेष करके तीन शक्ति के परिचय शास्त्र में प्राप्त होता है। एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा, एक है तटस्था। जो अंतरंगा शक्ति है उसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं। जो शक्ति स्वरूप में अपने अंदर ही रहता है वो है स्वरूप शक्ति। तो श्री राधा रानी भगवान के स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति ह्रादिनी नाम जान, तो इसको समझाते कहते हैं कि श्री राधा रानी और कुछ नहीं है, कृष्ण की प्रेम विकार के मूर्ति हैं। प्रणय विकार, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम के कारण जो विकृति हुआ है उस विकृति का मूर्ति है, और वो स्वयं स्वरूप शक्ति ह्रादिनी शक्ति उनके नाम है। तो श्री कृष्ण के, भगवान के जो स्वरूप शक्ति है वो त्रिविध प्रकार के है। एक शक्ति है, इसी को आगे बयान में कहते हैं कि ह्रादिनी कराया कृष्ण आनंद आस्वादन, ह्रादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। ये जो स्वरूप शक्ति है उसमें तीन प्रकार के विभाग है, एक सत, एक चित और एक आनंद। सत अंश में सांदिनी, चित अंश में संबित और आनंद अंश में लादिनी। इस तीन प्रकार नाम विशेष के तीन स्वरूप शक्ति भगवान का है और इनमें से जो लादिनी रूपक शक्ति के वृत्ति है स्वरूप शक्ति के, जिनके द्वारा कृष्ण स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी पोषण करते हैं, ये लादिनी शक्ति का वृत्ति है, ये क्रिया है। तो सचिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही चीज शक्ति तारा धरे दिनी रूप। श्री कृष्ण के शरीर जैसे हमारा शरीर बना हुआ है चर्म मांस हड्डी रक्त आदि से, भगवान का शरीर के ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सप्त धातव नहीं है। भगवान के शरीर में तीन ही वस्तु बना है, तीन इंग्रेडिएंट से भगवत शरीर निर्मित हुआ है। वो तीन वस्तु क्या है? सत, चित और आनंद। तो भगवान सचिदानंद विग्रह है, सत चित आनंद में उनका शरीर बना हुआ है और हम लोग जो जीव हैं उनके एक टुकड़ अंश हैं, कण मात्र अणुमात्र अंश हैं। वो भी स्वरूप शक्ति का नहीं, आगे बोलेंगे, वो जीव शक्ति का जो तटस्थ शक्ति के अंश हैं, लेकिन उन्हीं के शक्ति है अंश हैं। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो अंश में अंशी का लक्षण रहेगा कि नहीं? जैसे समुद्र है, विशाल समुद्र है, कई सैकड़ों करोड़ों हजारों गैलन टन पानी भरा हुआ है ना, नहीं? और सारे पानी नमकीन है, आप उसमें से एक ग्लास उठाकर पीजिए या पूरा आधा समुद्र पीजिए, टेस्ट तो नमकीन लगेगा ना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये बकेट पानी नमकीन, मैं थोड़ा सा लूंगा नमकीन थोड़ी लगेगा, ऐसा थोड़ी नहीं, प्रोपोर्शनेटली और नमकीन है तो नमकीन ही है। सारे एक बिंदु भी लोग मुंह में लगाओ थू थू करेंगे नमकीन, क्योंकि नमकीन। ठीक इसी प्रकार साक्षात श्री भगवान जो उनके श्री विग्रह सत चित आनंदमय है, सचित आनंद बना हुआ है और हम जो जीव शक्ति उनके अंश है, तो हमने भी तो यही होना चाहिए, हम छोटा से छोटे रूप में होना चाहिए। जैसे इतने बड़े पेपर, उसको पेपर बोलेंगे, उसके छोटा सा कोना में तोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? पेपर ही बोलेंगे, इतना बोलेंगे ये छोटा ये बड़ा, लेकिन पेपर ही तो बोलेंगे, और कोई लकड़ी थोड़ी बोलेंगे उसको, नहीं, वही वस्तु है। ठीक भगवान के अंश के नाते मामे वंश जीव लोके, जो जीव को भगवत अंश माना जाएगा, जो जब भगवत विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है तो हमारा अंदर सच्चिदानंद कहाँ है? भौतिक शरीर है। बोलते हैं कि नहीं, ये प्रमाण है, जितने भी प्राणी है मनुष्य हम बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं समग्र जगत में जितने प्राणी है, सभी के अंदर तीन प्रकार की चेष्टाएं देखी जाती है। पूरे सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, नाना प्रकार के प्रयास चेष्टा जो करते हैं, उसमें तीन लक्ष्य रहता है। तीन चीज को पाने के लिए मनुष्य हमेशा चेष्टा करता है, अनादिकाल से करते आया है। आपको शायद पता नहीं, मैं बोलता हूं सुनिए ढंग से, तो आपको पता चलेगा। तो है वो तीन क्या है, तीन चीज के लिए जो प्रयास करता है, एक है बुभुत्सा, एक है जिजीविषा और एक है जिज्ञासा। याद रखिए, बुभुत्सा कहते हैं भोगने की इच्छा को, भोगने की इच्छा का नाम है बुभुत्सा। आप सब बताएं, मैं सब भोगने की इच्छा में काम नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सुख भोग लूं, थोड़ा टेस्ट भोग लूं, थोड़ा नाना प्रकार की अमेंद्रिय नाना प्रकार की जो तुष्टि कर सकते हैं, भोग की इच्छा के लिए हर एक प्रकार के काम करते हैं, भोग सुख पाने के लिए ना, नहीं भोग इच्छा। तो केवल सुख भोग करने के लिए काम करते हैं? बोलते नहीं, केवल सुख भोग करने के लिए नहीं करते हैं, और एक इच्छा भी रहता है ना, क्या ना, जीने की इच्छा भी रहता है। इसे जीजी भी साथ है, जीने की इच्छा इतने प्रबल है। 88 साल के उम्र में 27 सलाइन सुई फोड़ा हो पूरे शरीर में, फिर भी हाथ जोड़ के बोले मैं लोन लेकर पैसा दे दूंगा, मुझे बचा दो डॉक्टर साहब, कहेंगे ना। जीने का इतनी प्रबल इच्छा है, मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, केवल सुखी होने का भोगने की इच्छा नहीं, हमारा मन में जीने की इच्छा ही प्रबल है, ये बताऊं। और केवल जीने की इच्छा भी नहीं है, और एक इच्छा भी रहता है, मैं जीते रहूं, सुखी होकर जीते रहूं, और क्या ना, थोड़ा जानकारी प्राप्त होना चाहिए, जिज्ञासा। सबका मन जिज्ञासा भी होता है ना, हमेशा कुछ नहीं प्रकार की, ये क्या है, किस लिए है, कब तक, नाना प्रकार की जिज्ञासा। ये तीन प्रकार, देखिए तीन से चौथा नहीं होगा, ये तीन प्रकार के जो इच्छा प्रत्येक मनुष्य के अंदर मूलभूत रूप में बैठा हुआ है, ये तीन है क्या, क्यों क्यों ये तीन इच्छा बरबस हमारा अंदर है, जा नहीं सकता हमसे, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा और भोगने की इच्छा, ये सर्वता हमारे अंदर भरे पड़ा है, क्यों, कहां से है, यहीं से विग्रह के अंश के ही प्रमाण है, जो सच्चित आनंद का ही प्रमाण है। सत शब्द का अर्थ है हमेशा रहने वाला आधार, हमेशा टिके रहना, क्योंकि भगवान सत्य हमेशा रहते हैं, तो हमारा अंदर ना मरने का इच्छा इसलिए नहीं होता, हम जीना ही चाहते, हमेशा रहना चाहते, यही प्रमाण है, हम भगवत अंश है, इसलिए हम भी हमेशा रहना ही चाहते, मिटना नहीं चाहते ना, कितनी परेशानी हो जाए, नहीं मरना नहीं चाहते, क्योंकि सत अंश में हम स्थिति अंश में है, हम स्थित रहना चाहते, मिटना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार में बचाए रखना चाहते हैं अपनी स्थिति को, ये क्योंकि सत अंश है, आनंद अंश, इसलिए भोग करना चाहते हैं, भगवान आनंद में व्यसात, वो आनंद भोग, तो हम भी इसके टुकड़े के कारण नाना प्रकार के आनंद भोगना चाहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाना प्रकार से इंद्रिय के द्वारा नाना प्रकार से आनंद भोग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, क्योंकि ये आनंद के अंश हैं, वही आनंद हम भी चाहते हैं भोगना, इसलिए उमिषा जी जीविषा, जीने की इच्छा और भोगने की इच्छा। तो क्योंकि भगवान के विग्रह चिद विग्रह है, चिन्मय ज्ञानमय विग्रह है, तो इसलिए हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ही प्रमाण है हम सब भगवत अंश है, इसीलिए इस तीन इच्छा सर्वता हमारे अंदर मौजूद है, उसको हम हटा नहीं सकते, अविच्छेद्य अंग है हमारा। तो इस प्रकार तो ये कहते हैं कि सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप जो है, स्वरूप के अंदर है सच्चिद आनंद तीनों है, एक ही चीज शक्ति तारा धने धरे तीन रूप, शक्ति एक है लेकिन थ्री फेज है, शक्ति का नाम है चिद शक्ति, चिन्मय शक्ति, वो जड़ शक्ति नहीं है, दो प्रकार होता है, एक जड़ एक चेतन, समझ रहे, जड़ किसी को चेतन किसी को बोलते हैं, जैसे ये टेबल है, ये है, ये सब जड़ है और हम चेतन है, बोले क्यों, उनको हम टेबल का गाली दो, दो घंटा तक गाली दो, कितने बुरी बुरी बात है, वो कुछ प्रतिकार कुछ कहेगा कुछ करेगा, और आपको केवल 5 मिनट गाली दो, देखो पत्थर मारेंगे कि थप्पड़ मारेंगे क्या करेंगे, है ना, क्यों आप चेतन है, मैं आपको छूंगा नहीं, खाली यही से देख लूंगा, मुझे क्यों देख रहा, अरे देखूंगा नहीं, देखने से भी, क्योंकि चेतन है, इमीडिएट रिएक्शन, लेकिन जड़ में कुछ नहीं, जड़ है मेरा। तो ये जो चेतन शक्ति है, चिन्मय शक्ति, उस शक्ति का नाम एक ही है कि चिद शक्ति, इसके अंदर चेतना है, चेतना है मतलब उसके अंदर मान क्रोध प्रणय स्पंदना ये सब शक्ति है, उसका विकार आता है, कुछ भी करने स्वीकार, क्योंकि चेतन है वो, जड़ नहीं है, मरा हुआ नहीं, डेड मैटर नहीं, स्पिरिट है। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति और चिन्मय शक्ति, चिद शक्ति है, एक शक्ति उनका नाम है चिन्ह शक्ति, लेकिन ये तीन प्रकार से अभिव्यक्ति होता है। जो तीन प्रकार से अभिव्यक्ति होता है उसी को कहते हैं सच्चित आनंद, मतलब सत शब्द में सांदिनी, चित शब्द में संबित और आनंद शब्द में ह्लादिनी। वो तीन शक्ति, एक शक्ति के तीन प्रकार से व्यक्त होता है, तीन प्रकार से व्यक्ति होता है। जेहेतु एक शक्ति है ये तीनों हमेशा मिल करके रहते हैं, ऐसा नहीं कि तीन होकर रहते हैं, नहीं हो नहीं सकता, हमेशा तीनों मिल करके रहेंगे। और तीनों में भी अंतर यही है कि जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सत से अधिक चित का और चित से अधिक लादिनी का, सांदिनी से बढ़कर के संबित, संबित से बढ़कर के लादिनी। लादिनी शक्ति सर्वोपरि है, सर्वोपरि इसलिए है जैसे एक दो तीन, तीन ही संख्या में बोला तो एक दो तीन में अंतर क्या है कि तीन सर्वश्रेष्ठ है, इसके अंदर एक भी है दो भी है, तीन के अंदर एक भी है दो भी, दोनों आया ना, दो में तीन नहीं आएगा, एक आ सकता है दो भी है, और एक में केवल एक रहेगा दो तीन नहीं। ठीक इसी प्रकार केवल सांदिनी में जो हलदिनी के, यद्यपि तीनों कभी अलग नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं, एक शक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता, हमेशा तीनों मिलकर के रहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है लादिनी जब रहती है उसके अंदर तीनों आते ही हैं, इस प्रकार के भाव। तो कहते हैं कि वो तीनों शक्ति भी कभी कभी एक प्रोपोर्शनेट में रहते हैं, जितने 20% चांदिनी 20% संबी 20% लादिनी तीनों मिलकर के अभिव्यक्ति होंगे, कभी कभी ये 40% ये 10%, कभी किसका ज्यादा कभी किस, लेकिन रहेंगे तीनों, तीन कभी दो या एक नहीं हो सकता, हमेशा तीन ही रहेंगे, लेकिन उनका जो प्राकट्य की अंतर रहेगा, कौन कितने अधिकार को होता है। जब कभी कभी ये सच सांदिनी शक्ति का जिस सत्व में अधिक, ये तीनों शक्ति को शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व कहा गया है, जो प्लेटफॉर्म, क्यों, क्यों जो तीनों शक्ति ये स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति होने के नाते उनको जड़ शक्ति छू नहीं सकता, माया शक्ति से सर्वधा स्पर्श शून्य है, इसलिए कुछ विशुद्ध सत्व कहा गया, माया शक्ति से छू भी नहीं सकता। भागवत में वर्णन आया दूसरा स्कंद में, माया विलज्जमानया, माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, शर्म करती है, पीछे खड़ी रहती है, हमेशा आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति के सामने माया टिक नहीं सकती, इसीलिए माया को कहा गया अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताया नहीं मार अधिकार। जब सूरज आएगा, अब सूरज को पूछो, हे सूर्यदेव मुझे कल रात को 12 बजे कैसा अंधकार थोड़ा बताओ, बता पाएंगे नहीं, भले इतने बड़े देवता हैं लेकिन रात के बारे में ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रात को कोई देख ही नहीं सकते, सूरज को रात को देख सकते हैं, हाँ क्या बस ही, अगर रात को 12 बजे में सूरज जगे तो रात 12 बजे भाग जाएंगे, दिन हो जाएगा, तो सूरज छुप जाएगा तो कभी भी दोनों के भेंट होगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण और माया उनका भेंट हो नहीं सकता, कि कृष्ण परम स्वरूप शक्ति संपन्न दिव्य है, उनके सामने माया अंधकार उनको टिक नहीं सकता, बोले इसलिए पीछे काट देती है, तो माया से स्पर्श भी नहीं हो सकता, बिल्कुल माया से बचे हुए हैं, इसलिए इस जो स्वरूप शक्ति का जो विकार को उसको विशुद्ध सत्व कहा गया, हमेशा विशुद्ध सत्व में ही इस तीन शक्ति के प्राकट्य होगा, बाकी किसी में हो नहीं सकता। इसलिए भागवत में कहा गया जो कृष्ण जन्म प्रसंग में, भगवान कृष्ण जन्म हुए वसुदेव से, भगवान शंकर कहते हैं वसुदेव का अर्थ क्या है ना, सत्वं विशुद्धं वसुदेव सद्दितम, जो विशुद्ध सत्व है उन्हीं को वसुदेव कहा जाता है, और इसे कुछ नहीं, विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में ही भगवान के सर्व शक्ति के प्राकट्य हो सकता है, नहीं तो उनको कोई प्राकट नहीं कर सकता, हुआ नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जब ये विशुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म में ये तीन अंशिक जो शक्ति है, जब सत संज्ञा की जो सांदिनी शक्ति का परिमाण अधिक प्रकट हो तो उसको कहा जाएगा आधार शक्ति। तो उसको कहा जाएगा आधार शक्ति, मतलब आधार। जैसे भगवान के धाम, भगवान के रूप, भगवान के आसन, भगवान के सज्जा, भगवान के पादुका, उनके पोशाक, उनके माता पिता परिकर, ये सब आधार शक्ति, भगवत को धारण करने का शक्ति अंदर है। क्योंकि सांदिनी शक्ति का विशुद्ध सत्व में सांदिनी का प्रभाव ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए आधार शक्ति रूप में प्रकट हुआ। जब वही विशुद्ध प्लेटफॉर्म में चिन्मय शक्ति, संबित शक्ति के थोड़ा परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसका नाम होगा आत्मविद्या। उसको कहा जाएगा आत्मविद्या। आत्मविद्या के दो वृत्ति है, स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानकार प्राप्त करेंगे, और दूसरे को भी जानकार करा सकते हैं, दूसरे को ज्ञानी बना सकते हैं और खुद भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार आत्मविद्या की बुद्धि है, वो संबित शक्ति में होता है। और अगर भादिनी शक्ति का प्राधान्य हुआ, परसेंटेज ज्यादा हुआ, तो उसको कहते हैं, उसका नाम है गुह्य विद्या। गुह्य विद्या के भक्ति को कहा जाता है। आप देखिए राज विद्या राज गुह्यम भगवान जो कहते हैं नवा, इसलिए उसको भक्ति के बीच में कहा गया, ये चैप्टर ऑफ भक्ति, क्योंकि भगवान ने इसी भक्ति का नाम को गुह्य रूप में कहा है, सीक्रेट गुह्य विद्या नाम होता है। भादिनी शक्ति जब विशुद्ध सत्व में अधिक परिमाण प्रकट होगा तो उसको गुह्य विद्या के नाम कहा जाएगा, जिसका नाम है भक्ति। अब भक्ति की भी दो वृत्ति है, भक्ति भादिनी शक्ति का वो वृत्ति है जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं और उस जिसके द्वारा नाना प्रकार के भक्तों को आनंदित करते हैं और उनका भक्ति के द्वारा भी स्वयं आनंदित होते हैं, ये है यानी इसकी वृत्ति, ये गुह्य विद्या। भगवान सारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान अजय अजित है, स्वराट है, स्वाधीन है, लेकिन फिर भी भगवान बस हो जाते हैं, भक्त्यवश स पुरुष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्तवश के हो जाते हैं, कि उनके पास भक्ति कोई मनुष्य भगवान को भक्ति बस नहीं कर सकता, असंभव है, नहीं कर सकता, क्योंकि स्वरूप शक्ति के बिना, स्वरूप शक्ति के दूसरा कोई निरपेक्ष शक्ति है, किसी का कोई बस नहीं कर सकता, क्योंकि जो भक्ति है ये स्वरूप शक्ति का भादिनी अंश के वृद्धि है, तो वही केवल भगवान को बस नहीं कर सकता। तो भक्ति इसलिए हमारे प्रॉपर्टी नहीं है, किसका नहीं है, ये तो साक्षात राधा रानी ही भक्ति है, क्योंकि वो भादिनी शक्ति के मूर्त स्वरूप है, विग्रह है, तो भादिनी शक्ति के वृद्धि के नाम ही भक्ति है, तो ही प्रकट कराते हैं। और वो भी प्रकट कब होगा? क्योंकि हमारे जो शरीर है इस भौतिक शरीर ब्रह्मांड में, हम तो ना तो स्वरूप शक्ति है नहीं, हम लोग जो भगवान के शक्ति के अंदर जीव शक्ति है, वो उसको तटस्था शक्ति कहा गया। भगवान ने तीन प्रकार शक्ति में बताया, एक इंटरनल अंतरंगा, एक एक्सटर्नल बहिरंगा, और उसके बीच वाला एक है जिसके नाम है तटस्था, मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं। वो तटस्था शक्ति के वृत्ति है, वो ना तो अंदर है ना बाहर है, वो बीच में रहता है। बीच में रहने के कारण उनका योग्यता है, बाहर में भी जा सकता है, अंदर में भी जा सकता है, दोनों जा सकते हैं। लेकिन जो अंतरंगा है कभी बाहर जा नहीं सकता, जो बहिरंगा कभी अंदर जा नहीं सकता, उनका क्षमता नहीं है। बहिरंगा कस्मिन काले अंदर जा नहीं सकता, अंतरंगा कस्मिन काले बाहर आ नहीं सकता, लेकिन जो बीच वाले हैं वो दोनों जगह में जा सकते हैं, और हम ये बीच वाले हैं, गड़बड़ी है, हम तट वाले हैं, तट समझते ना, किनारा। अभी नदी के किनारा देखो, किनारा इसको कहते हैं जहां जल और स्थल टच करता है, जिस रेखा पर सीमा में पानी भी है और स्थल भाग भी है, जल भाग भी, जहां टच किया है उसी को सीमा तट कहेंगे, इसी तट कहेंगे ना। और तट अगर पानी बारिश हो गया बढ़ गया तो तट वहां चला गया, अब धूप सूख गया तट नीचे चला गया, वो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, वो एक स्थिति नहीं रहता उनका, वो बदलता रहता है। अरे केवल बदलता नहीं है, कभी पानी के अंदर भी जाता है, कभी स्थल में भी आता है, कभी जल में भी जाता है, और दोनों जगह जा भी सकता है। यही समस्या है। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण रूप से स्वर्ग शक्ति तो है नहीं कि पूरा पूरी बहिरंगा शक्ति भी नहीं है, वो बीच वाला है। इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि ये जो पंच महाभूत है, भूमि राप नल वायु खंग मन बुद्धि वच अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रकृति रष्ट था, बोले जो आठ प्रकार की मेरे भिन्न शक्ति है वो तो है, लेकिन अपरेयम इतस्तन्यांग प्रकृति विधि में पराम, इससे अलावा एक और पराशक्ति है। यही दंग धार्यते जगत, वो जिसको जीव शक्ति कहते हैं वो थोड़ा सुपरियर एनर्जी है। ये सब जो बहिरंगा शक्ति इनफीरियर एनर्जी है, वो थोड़े उनसे सुपरियर है। जीव शक्ति थोड़ा सुपरियर एनर्जी है, लेकिन इतना सुपरियर नहीं है कि स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा नहीं है। भौतिक चीज से जड़ शक्ति से ऊपर है, अंतरंगा से नीचे है, इस बीच में है। तो बीच में रह करके उनके जो इस शक्ति का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो क्या है? ना शक्ति मान के सेवा में लगना, अंश और शक्ति का तो ही धर्म होता है। शक्ति शक्तिमान का आश्रय में रह करके उनकी सेवा करे, अंश अंश का सेवा करे, यही धर्म होता है। तो इसी के माने हम जो अंश है, तट शक्ति है, जीव शक्ति है, हमारा धर्म है हम उनको सेवा में लगे। हम उनके सेवा में लगे तो वो आनंद हमको प्राप्त होगा, वो आनंद हमको आनंद प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग गड़बड़ किए, क्योंकि हमारा पोटेंशियल भी है, दोनों जगह जा सकते हैं, तो हम वहां ना देख कर विमुख हो करके इस जड़ जगत को देखे, यही हमारा दोष हुआ। यहाँ आकर के परेशानी फंस गई, विमुख हो करके यहाँ देख लिए, जब वहां देखते तो कष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान के जो तीन शक्ति है, तीन शक्ति से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है लादिनी शक्ति, वही लादिनी शक्ति का ही विकार है सीधा राधारानी, इसलिए उनके नामित जारा शक्ति लादिनी स्वरूप शक्ति कहा गया। यद्यपि चित शक्ति एक ही है, उनके इस तीन विकार में इस प्रकार से हुआ। तो इसको और समझाते कहते हैं, आनंद अंश से लादिनी, सत अंश से सांदिनी, चित अंश से संबित, जारे ज्ञान करिमानी, मैं आपको बता ही दिया। तो इस तीन शक्ति में लादिन शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और जिनके ड्यूटी है कि कृष्ण को आह्लादित करना और समस्त भक्तों को आनंद द्वारा पोषण करना, ये उनका दो वृत्ति है लादिन शक्ति। तो इन दो वृत्तियों में से जो लादिन शक्ति का जो वृत्ति जो भगवान को भी आस्वादित करता है आस्वादक के रूप में, और जीव के अंदर जाकर भी उनके द्वारा भी आस्वादय बनता है, भगवान उनको भी आस्वादन करते हैं, ये दोनों प्रकार के वृत्ति के साथ लादिनी शक्ति भगवान की आनंददायिनी शक्ति है। वही शक्ति का विकार, शक्ति का जब मूर्ति रूप में प्रकट होते तो राधारानी आते हैं। तो इसी को समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे सांदिनी शक्ति का बताते हैं, जो सत अंश से विकार होता है, जो भगवान के माता पिता सैया आसन ये सब होते हैं। तो इस प्रकार जो आनंदमय शक्ति कृष्णेर भगवता ज्ञान संबितर साथ, जो संबित शक्ति रे कृष्ण अपने आप को जानते हैं और दूसरे को जनाते भी हैं। तो इस प्रकार लादिनी सार्थ लादिनी शक्ति का क्रिया बताते हैं, बोलते हैं कि लादिनी सार है प्रेम, और प्रेम सार है भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो क्योंकि राधारानी महाभाव स्वरूपिणी है, उसी को बताते हैं कैसे प्रेम विकार प्रणय विकार है। बोलते जो लादिनी शक्ति है, उस शक्ति को अगर गाढ़ किया जाए, उनके निचोड़ निकाला जाए लादिनी शक्ति का, उसका निचोड़ होगा प्रेम। प्रेम का एक विशेष लक्षण होता है। एक्चुअली प्रेम शब्द इस भौतिक संसार से निष्पन्न हो ही नहीं सकता ना, प्रेम शब्द इस भौतिक संसार में उपयोगी नहीं हो सकता, ना उपयोगी नहीं हो सकता। क्यों? कि प्रेम शब्द का एकमात्र अर्थ होता है कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेमना, जो कृष्ण के इंद्रिय को प्रसन्नता करे, प्रसन्न कर सके, जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण को प्रसन्न करने का सर्वांगीण रूप जो चेष्टा है उसको कहते हैं प्रेम। इस दुनिया में जो तथा कथित प्रेम शब्द उपयोग करते हैं ये केवल स्वार्थ भरा हुआ है, स्वयं के आनंद उसमें भरा हुआ, मैं खुश हूं, दूसरे को एक्सप्लेन करके आई वांट टू बी हैप्पी। ये जो तथा कथित लोग बोलते हैं आई लव यू कुछ नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन ये हो ही नहीं सकता है संसार में, प्रेम के घटन हो ही नहीं सकता। प्रेम शब्द का इसलिए आखिर के अर्थ है जिनके द्वारा कृष्ण के इंद्रिय को प्रसन्नता किया जाए, सुख पहुंचा जाए, उसका अर्थ है प्रेम। और दूसरा एक प्रेम का लक्षण है, शास्त्र कहते हैं उज्जैन में बताया गया कि ध्वंस का समस्त कारण सर्वथा ध्वंस हितम, ध्वंस कारण अभिविद्यते, ये कहते हैं कि ध्वंस का समस्त कारण रहने मौजूद रहने पर भी ध्वंस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पूरा पूरा कारण मौजूद है, नष्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल मिट जाना चाहिए, लेकिन मिट नहीं सकता। क्यों? कि प्रेम, यही लक्षण है प्रेम का। तो इसी से इस प्रकार जो प्रेम है, प्रेम जिसको हम समझ नहीं पाते हैं प्रेम क्या है, लेकिन यही उसके लक्षण है। इस लक्षण युक्त जो जिनका वृत्ति, जिनके बुद्धि, जिनके मन, जिनके इंद्रिय की चेष्टा, जिनके विचार प्रयास सब कुछ केवल कृष्ण के सुख के तात्पर्य है, केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, तो वहां प्रेम शब्द के उपयोग होगा। और वो भी ऐसा सुखी करना चाहते हैं कि संपूर्ण कारण ध्वंस करने का कारण उपस्थित हो भी जाए लेकिन ध्वंस नहीं हो सकता, सर्वथा ध्वंस रहितम, सर्व ध्वंस कारण अभी विद्यते, सारे कारण उपस्थित होने पर भी वो नहीं मिट सकता। कृष्ण प्रतिवांछा इतने प्रबल जहां हो तो उसको प्रेम आख्या में कहा जाता है। तो जो व्लादिनी शक्ति है वो जिसके हृदय में इस प्रकार से प्रकट हो जाए तो उसको कहते हैं प्रेम। वो कब प्रकट होगा? हमारे जो भौतिक शरीर है उसमें स्वर्ग शक्ति का अंश तो है ही नहीं, उसमें बहिरंगा शक्ति के, माया शक्ति के विकार है। क्या है ना, माया शक्ति भी तीन गुण वाले है, वो भी त्रिगुणात्मिका है, इसमें है सत, रज और तम, सत्व रज तम जो तीन गुण वाला है, ये माया गुण के थ्री फेज है। हम इन तीन फेज में पड़े हैं, इन तीन फेज में जब तक रहेंगे स्वर्ग शक्ति तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी आप इसको तमगुण से ऊपर उठ के रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण, सतोगुण को भी और सत्व करो, और सत्व करो, सर्वथा सतोगुण को रज और तम से रहित कर दो, तब उसको शुद्ध सत्व स्तर में आएगा। जब इस शुद्ध सत्व स्तर में आएगा तभी भी भगवान की जो स्वरूप शक्ति उसमें धारण नहीं कर सकता ना, नो पोटेंसी, इसको धारण करने का शक्ति नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिफलित हो सकता, रिफ्लेक्शन हो सकता, भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रतिफलन होगा। जो आदिनी शक्ति का प्रतिफलन आधार शक्ति नहीं बन सकता, प्रतिफलन हो सकता। इसीलिए भागवत में जब कृष्ण जन्म प्रसंग में आया कि मन आनकदुन्दुभि, भगवान अपि विश्वात्मा मन आनकदुन्दुभि, आनकदुन्दुभि वसुदेव का मन में प्रकट हुए, ये प्रतिफलित हुए आए इस प्रकार आते। तो भक्ति को हम प्रतिफलित कर सकते हैं, विशुद्ध सत्व जब तक नहीं होगा सत्व आ ही नहीं सकता। तो इस अवस्था में ये जो भक्ति के वृत्ति है जिसमें केवल कृष्ण को सुख पहुंचाने का विचार, बुद्धि, एजेंडा और कुछ भी नहीं, उसके अलावा और वो भी कितने प्रकार के उनको नष्ट करने का मौका आ जाए, कितने चांस आए, कभी नहीं मिट सकता। अप्रतिहता अहेतु की अप्रतिहता लक्षण वाला तो वो प्रेम स्थिति है। तो ये रादिनी को निचोड़ इस प्रेम, जिसके अंदर रादिनी शक्ति का विकार होगा शुद्ध सत्व में, तो वो प्रेम अवस्था को आएगा। ये रादिनी का सार है प्रेम। और प्रेम जब और गाढ़ होगा, प्रेम स्तर को आने के बाद में, उसके बाद भी और प्रमोशन होता है, प्रेम के विकार और होता है। क्या ना, प्रेम के बाद में एक अवस्था आता है स्नेह। प्रेम अगर अति उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो स्नेह, स्नेह किसको कहते हैं ना, स्नेह में हृदय और मशरूम और द्रवीभूत हो जाता, और मेल्टेड और लिक्विडेट हो जाएगा और तरल हो जाएगा, जिसमें स्नेह अवस्था होने के बाद केवल कृष्ण को दर्शन करने से मन नहीं बुझेगा, व्याकुल हो जाएगा ना, केवल देखने से क्या हो, और सेवा करूं, उनको स्पर्श करूं, इस प्रकार के भाव, दर्शन में व्याकुलता और बढ़ेगा, ये स्नेह। और प्रेम और जब गाढ़ होता है तो प्रेम स्नेह अवस्था में आता है। स्नेह हम लोग कभी कभी स्नेह शब्द उपयोग कर देते हैं, इंग्लिश में अफेक्शन बोलते हैं, लेकिन ये स्नेह पर कुछ नहीं है। सर तो असली स्नेह जब प्रेम गाढ़ होता तब स्नेह होता है, और जब स्नेह और गाढ़ हो जाएगा तो वो स्थिति आएगा मान, उसको कहते हैं मान। देखिए प्रेम का ही विकार है, प्रेम गाढ़ा होने से स्नेह होगा, स्नेह गाढ़ा होने से मान होगा। मान स्थिति में आपने प्रियतम को प्रति इतने आत्मीयता इतने बढ़ जाएगा कि थोड़ा सा भी कुछ अतर पत्र से आप गुरुट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, हैं ऐसे कैसे, अरे आप उनके चरण की दासी है, किंकर ये ना तो है लेकिन फिर भी वो तो मेरे हैं, वो इस इतने अपनापन बढ़ जाएगा। तो कुटिलता व्यवहार, आप कुटिल व्यवहार करेंगे, रुष्ट होंगे, कुट वचन कहेंगे, गाली देंगे, और वो गाली कुट वचन वो प्रियतम को वेद स्तुति से और बढ़कर आनंदित करके, हुआ क्या आनंद, ये लविंग रिलेशन में स्थिति में आता है स्नेह की। जो मान मान करी प्रिया जदि करे लांछन भर्छन, मान करके गोपियां यदि लांछित भर्छित करके उन गाली देंगे, अरे वेद की स्तुति से भी बहुत बढ़कर कृष्ण मानेंगे, हुआ ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो जानते हैं इनके अंदर कितने ममत्व है, महत्व को अधिक स्नेह आता है। मान मान के अगर और गाढ़ हो जाएगा, मान गाढ़त्व तो होने के बाद में आएगा स्थिति प्रणय। प्रणय स्थिति में मैं जैसे बता रहा था, प्रणय स्थिति में जो प्रणय स्थिति में आ गया तो उनका अपने प्राण, अपने शरीर, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने पोशाक परिच्छेद और प्रियतम के मन प्राण बुद्धि पोशाक परिच्छेद में अविच्छेद्य कोई भिन्नता नहीं दिखेगा, बोलेगा समान है, एक प्राण है, एक बस, सब कुछ एक हो जाएंगे इस स्थिति में, एक आदमी एक हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी देखें आप पूरी में जाकर देखेंगे जो हाँ टूटा गोपीनाथ मेरा आश्रम जो प्रकट है, यह राधा रानी बिल्कुल काली है, ललिता जी भी काली है, कृष्ण भी काली है, तीनों एक हो गए, राम रूप सब बदल जाए, एकत्व हो जाए, बिल्कुल एकत्व हो जाए। ये प्रणय विकार है, इसकी राजधानी प्रणय विकार है। प्रणय स्थिति में कुछ अलग नहीं रहेगा, एकत्व हो जाएगा, ये प्रणय। और प्रणय अगर गाढ़ होगा, उस प्रणय स्थिति को और गाढ़ कर देने से उसको कहा जाएगा भाव। भाव स्थिति आएगा, भाव स्थिति में ये स्थिति भाव के लक्षण में कहा गया है कि कृष्ण को पाने का, कृष्ण प्राप्ति का जहां आशा है, वहां अगर संसार के समस्त दुखों को इकट्ठा करके दिया जाए तब वो सुख करके मानेगा, उसको सुख करके मानेगा, परम सुख करके मानेगा। लेकिन संसार के समस्त सुख प्रावधान करके उनको दिया जाए कि कृष्ण प्राप्ति के आशा नहीं मिलेगा, उसको परम जहर दुख करके मानेगा, ये भाव की स्थिति है बड़े उद्देश्य। और इस स्थिति को और गाढ़ किया जाएगा, भाव की स्थिति को और निचोड़ गाढ़ किया जाएगा, तब होगा महाभाव। महाभाव में तो एक एक क्षण में, एक एक मुहूर्त क्षण में नित्य नूतन रूप दिखाई पड़ेंगे प्रियतम का, अविच्छेद्य रूप से। और जिनके विरह का, उनसे वियोग का स्वप्न में विचार, केवल वियोग नहीं है, केवल चिंता में आ गए हमारे से अलग हो रहे हैं करके असह्य यंत्रणा होगा, असह्य यंत्रणा। जैसे एक सत्य घटना हुआ था, एक बार श्री राधिका ने, मिलते नहीं थे कृष्ण तो, बड़े मुश्किल से मिलते थे, दोनों नंदगांव वर्षण के बीच में एक स्थान है, वहां मिले थे शंकर के पास। तो मधु मंगल कृष्ण के साथ ज्यादा नहीं थे, अकल में ये पेशेंट साथ में एक लेकर आए थे, वो भी साथ में एक लेकर आए थे, ललिता जी उनके साथ में थे और कृष्ण के साथ मधु मंगल थे, दोनों मिले। इतने आकुलता व्याकुलता के बाद मिलन हुआ, राधा रानी तो रो रही थी, अब कैसे सुबह से चले जाते हैं, शाम तक दिखने नहीं मिलता, हम तो मर गए, आए जब उठे देखे तो भाई नहीं गए, शाम तक आए गाय को गोदली साथ जाए तो होता नहीं, परेशानी। तो राधा रानी को समझाते हुए कृष्ण उनको ले, नहीं नहीं राधिका ऐसा नहीं, बैठो, उनको सांत्वना प्रदान करने के, उनको खुश करने के लिए, उनके मान उनको तृप्ति करने के लिए बैठा करके भगवान कृष्ण स्वयं एक कंगी ला करके राधिका जी की बेणी को ऐसे क्या करते हैं, उसको कंगी करके उसको बेणी बंधन करते हैं, उनको सजाते हैं। बोले मैंने स्वयं अपना हाथ से उसको कंगी करके साफ कर उसको बेणी बांध करके उसे फिर सजाऊंगा। भगवान खुद बैठे हैं, ललिता जी फुल्ला के देता है, मधुमंगल साथ में खड़े, और कृष्ण बैठ करके आपने गोद में राधा रानी को बैठा करके उनके बड़ी बंधन कर रहे हैं। राधा जी बैठी हैं, उनके पीछे कृष्ण बैठे हैं, पीछे तरफ से बैठ करके सामने राधा रानी बैठी बड़ी बंधन करते हैं। तो इतने में राधा रानी के मुख तो स्फुटित कमल के सदृश है, उससे भी और बढ़ करके। तो एक भौरा, वो कोई फूल से कोई गुणगुण कर रहा था, वो देखा ये फूल क्या है, तो सद्य स्फुटित पुष्प से और बढ़ करके राधिका की मुख कमल, तो आकर के राधिका के मुख कमल पास हो रहा, आकर के गुनगुन गुनगुन करने लगा, ये सोचा इतनी सुंदर पुष्प, गुनगुन करने लगा। राधा रानी ऐसे भगवान उनके बेणी बंधन कर रही है, वो आकर के उनके मुंह में डिस्टर्ब कर रहा है उसको, राधा रानी हमेशा ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे कर रही है, ऐसे कृष्ण को नजर पड़ा कि राधा रानी डिस्टर्ब फील कर रही है, ये भौरा आकर राधा जी को डिस्टर्ब कर रही है, वो हमेशा हाथ हिलाती है उसको भगाने के लिए, वो जाता नहीं भौरा छोड़कर फिर आ जाता है। तो राधा रानी ने मधुमंगल बोले, मधुमंगल उस मधुसूदन को हटा लो, हटा लो, वो डिस्टर्ब कर रहा है राधा जी को। तो बोला हाँ अभी करता हूं। तो आपने लाठी निकाल कर उसको भगाते 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 लेकर गया भगवान का आदेश से, मधुमंगल ने लेकर के ओ थोड़ी दूर ले गया, बहुत दूर ले जाकर बोले आ गया। बोला इतने दूर मधुसूदन को ले गया और आएगा ही नहीं, मधुसूदन को तो दूर कर दिया और आएगा ही नहीं। बस ये शब्द राधा जी के कान में पड़ गया, मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है, मधुसूदन भौरा के भी नाम है, तो कृष्ण के भी नाम है। तो राधा रानी ने समझ ली ये मधुसूदन को मेरे से दूर कर दिया, अभी नहीं आएंगे, बस हो गया दुख। इतने दुखी हो गई, रोने लगी, रोने लगी, आवाज करके चिल्ला करके रोने लगी। कृष्ण बोलते मैं बैठा हूं तेरे पीछे बड़ी बंधन कर, नहीं मधुसूदन तो गए नहीं आ सकते। कृष्ण स्वयं समझाते समझाते थक गए, उनके विरह शांत नहीं हुआ, एक कान में शब्द पड़ गया। इतने में इतने दुख यंत्रणा हुआ, इतने रोई, कृष्ण के बड़ी बंधन छूट गया हाथ से, कृष्ण दुखी को रोने लगे, राधा जी के दुख को देख करके असह्य यंत्रणा कृष्ण का मन, कृष्ण भी रोने लगे, और कृष्ण के रोना देख कर मधुमंगल भी रोया, वो दोनों को रोने देख कर ललिता भी रोए, सारे मिल करके रोने लगे, बंद नहीं कर पाए कोई। अरे मैं बैठा उन्हीं की वजह से वो रो रहा है, और क्यों रो रहे हैं, मैं हूं करके रोना बंद, वो भी रोने लगे तेरे दुख देख करके, एक के दूसरे को दुख दिखा नहीं जाता। ये सारे मिल करके इतने रोए इतने रोए, उनके आंख से इतने पानी गिरा, ये एक कुंड बन गया, अभी भी एक कुंड है जिसको कहते हैं प्रेम सरोवर, ये प्रेम के निदर्शन है। ये कुंड भर गया पानी में, रो रो कर भर दिए उसको, ये है केवल शून्य मात्र से कृष्ण पास में बैठे हैं, लेकिन फिर भी विरह वेदना इतनी बढ़ जाता है, इसी को कहते महाभाव। तो महाभाव का स्वरूपिणी, महाभाव के स्वरूप का साक्षात मूर्ति रूप में श्री राधा जी है। इसलिए कहा गया लादिनी सार है प्रेम, प्रेम सार भाव, भावे रे परम काष्ठा तारा नाम महाभाव। ये महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका है। तो राधा रानी की ऐसा कुछ मत समझो कि जस्ट नट ऐसा जैसे हम सोचते हैं, ऐसा नहीं, साक्षात महाभाव स्वरूपिणी है। इस महाभाव स्वरूपिणी महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपिणी है। ठाकुरानी इसलिए कहा गया कि कृष्ण के कांता शिरोमणि, कृष्ण के अनेक कांता है, कृष्ण को सुख देने के लिए अनेक अनेक स्त्रियां है, लेकिन इस सब में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिरोमणि श्री राधा रानी है। सर्व कांता शिरोमणि सर्व गुण खानी, जितने प्रकार के गुण के आवश्यकता है कृष्ण को सुख करने के लिए, कृष्ण को सुखी होने के लिए, सुख देने के लिए जो जो क्वालिटी आवश्यकता है, सारे गुण का समन्वय एक साथ में ऑल इन वन फॉर्म है। इसलिए कहा गया कि सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो आज यहीं तक सुनते हैं, कल फिर इसे कंटिन्यू करेंगे कि आगे किस प्रकार राधा रानी का महिमा वो फाइंड आउट करते हैं। इसमें इतने गुणता से गुणता अंदर को गया है, अगर हम ठीक से सुनेंगे हम चिंता से भी नहीं कर पाएंगे कि कितने भाव था राधा और कृष्ण के अंदर में। अगर आप सुनेंगे लास्ट तक तो इतने डीप जाते हैं उन्होंने, जिसको सुन करके चमत्कार तक प्राप्त हो जाए कि क्या है ये, है ही तथ्य ऐसे। हरे कृष्ण। श्री राधा रानी की संवेद भक्त वृंद की ताई गोर हरि प्रेमानंदे।